लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सारी चाहते हैं और उन चाहतों में से एक यदि हम गौर करें तो हमारी एक तीव्र चाह ईश्वर से मिलन की है। हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में ईश्वर से मिलन की चाह अपने हृदय में संजोए रखता है। ईश्वरीय दिव्यता से मिलन की इस चाह के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि एक बीमार व्यक्ति के लिए अपनी बीमारी से चंगाई, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की एक चाह, शांति विहीन परिवारों में शांति की आशा, एक बिछड़े हुए प्रेमी को अपने प्रेम से मिलने की चाह इत्यादि इत्यादि। और इस भांति अपनी चाहतों या इच्छाओं की पूर्ति में हम विभिन्न तरह के कार्य और तरकीबों को अपनाते हैं। आज के सुसमाचार में हम एक इसी तरह की चाह को पाते हैं, जहां कुछ यूनानी लोगों की चाह यीशु ख्रिस्त से मिलन की है। अतः वे शिष्यों के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप में इस बात की परख करें कि हमारे दैनिक जीवन में कौन सी चाह अत्यधिक प्रबल है। हम अपने जीवन में किन चीजों और बातों को देखने और पाने की चाह रखते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु हम कहाँ जाते और क्या करते हैं।
जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को यह बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महीन मानवित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट में मुझे बचा, किंतु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें इस बात का एहसास दिलाए कि हमारे जीवन के अस्तित्व हेतु कौन सी चीजें अति आवश्यक हैं, जिससे हम उनकी प्राथमिकता अनुरूप उन चीजों की खोज और कामना कर सकें जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे द्वारा दूसरों के जीवन के लिए भी उपयोगी और लाभप्रद होते हैं। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले एक विधान की चर्चा करता है, जिसे वे अपने लोगों के हृदय में अंकित करेंगे। ईश्वर अपने नियमों को अपनी प्रजा के हृदय में लिखने की चर्चा करते हैं। ईश्वर इस भांति अपने लोगों के सारे अपराध क्षमा करने और उनके पापों को याद नहीं रखने की बात कहते हैं। श्रोताओं, यह हमारे हृदय के शुद्धिकरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जहां से हम अपने लिए एक चाह की उत्पत्ति को पाते हैं। हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली चाहतों में इस भांति सबसे पहली चाह ईश्वर को अपने जीवन का सर्वस्व घोषित करना है, जिनसे हमने यह जीवन पाया है। प्राचीन विधान की दी गई आज्ञाओं में भी हम इसे 10 नियमों की पाटी में अंकित पाते हैं, जिसका उल्लंघन चुनी हुई प्रजा ने की, यद्यपि उनकी शिक्षा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी दी गई थी। श्रोताओं, नए विधान को ईश्वर हमारे हृदयों में अंकित करने की बात कहते हैं, जो हमारे लिए प्रेम का विधान है, जिसे हम व्यक्तिगत रूप में अपने हृदय की गहराई में अनुभव करते हैं। अतः हर मानव हृदय जो ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता है, ईश्वर के विधान का वाहक बनता है। ईश्वरीय प्रेम के इस विधान स्वरूप हम स्वतः ही ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होते और इस प्रेम को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीने को तत्पर होते हैं। इस प्रेम को हम स्वयं यीशु ख्रिस्त में पाते हैं, जो सारी मानव जाति के लिए अपने को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, इब्रानियों के नाम पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए इसी प्रेम विधान की कीमत के बारे में जिक्र करता है। सच्चे प्रेम की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो कई बार हमारे लिए अति दुखदायी और कठिन होता है। यीशु ख्रिस्त ने इस प्रेम की कीमत को पहले ही अनुभव किया था, अतः वे अपने पिता से आंसू बहा बहा कर यह निवेदन और अनुनय विनय करते हैं कि यदि हो सके तो ये सारी चीजें उनसे टल जाएं, लेकिन पिता की इच्छा मानव जाति के लिए अपने बेटे में कुछ और ही थी। अतः पुत्र आज्ञाकारिता में सारी चीजों को स्वीकारते और क्रूस के बलिदान से नए विधान को हमारे हृदयों के अंतरतम में अंकित करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने कुछ यूनानियों का यीशु से मिलन की चाह के बारे में सुना, जिसका उत्तर यीशु सीधे तौर पर उन्हें नहीं देते बल्कि प्रत्यक्ष रूप में गेहूं के दाने का मिट्टी में गिरकर मरने की बात कहते हैं। वे स्वयं एक गेहूं के दाने हैं, जो सारी मानव जाति के लिए मरते और बहुतायत में फल उत्पन्न करते हैं। वे हमें अपने पीछे आने को कहते हैं, जिससे हम उनकी सेवा कर सकें और पिता के प्रेम के हकदार हो सकें। श्रोताओं, हमारा मिलन यीशु ख्रिस्त से तब होता है जब हम अपने में मरते हैं, जो हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं वरन अपने दैनिक जीवन के चाहतों और इच्छाओं की मृत्यु है, जहां हम अपनी योजनाओं और कार्यों को प्राथमिकता देने के बदले ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन के कार्यों को प्राथमिकता देते और उनका चुनाव करने को बुलाए जाते हैं। प्रभु हमें अपने सोच विचारों से ऊपर उठने का आह्वान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के प्रेम में मानव जाति के खातिर स्वयं अपनी सोच और अपनी योजनाओं का परित्याग कर पिता की इच्छा को स्वीकार किया। मानव के रूप में उन्हें भी यह प्रलोभन आया कि वे पिता की योजना से अपने को विमुख करें, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारिता में बने रहते हुए इस प्रलोभन पर विजयी पाई जो हमें पिता से उनकी प्रार्थना में झलकती है, पिता अपनी महिमा प्रकट कर। श्रोताओं, आने वाले दिनों में हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के जीवन के अति संवेदनशील क्षणों की यादगारी में प्रवेश करेंगे, जहां वे हमारे खातिर दुख उठाते और क्रूस पर मर जाते हैं। आइए हम उनसे याचना करें कि वे हमें अपने साथ रहने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनके जीवन के दुखों की इस पवित्र घड़ी में मित्रवत उन्हें अपना छोटा सहचर्य प्रदान कर सकें, जो हमारे हृदय के शुद्धिकरण का कारण बने और हमारी मुक्ति में मददगार सिद्ध हो सके।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को रोम के बम्बिनो जेसु अस्पताल की स्थापना की शतवर्ष जयंती के अवसर पर अस्पताल के रोगियों, उनके अभिभावकों, डॉक्टरों, नर्सों एवं कर्मचारियों के साथ समारोह मनाते हुए अस्पताल में रोगियों की देखभाल के कार्यों के लिए खुशी एवं आशा व्यक्त की। 100 साल पहले इसे सल्वियाती परिवार द्वारा वैटिकन को दान किया गया था। बम्बिनो जेसु बाल चिकित्सा अस्पताल बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित पहला इतालवी अस्पताल है जो पोप का अस्पताल बन गया है। पोप पियूस ने अस्पताल को 20 फरवरी 1924 को स्वीकार किया था। अस्पताल के उपहार के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पोप ने इस अवसर पर अपने संबोधन में 3 चीजों पर प्रकाश डाला, उपहार, देखभाल और समुदाय। संत पापा ने कहा, आज बम्बिनो जेसु यूरोप के सबसे बड़े बाल चिकित्सा अनुसंधान और उपचार केंद्रों में से एक है, जो दुनिया भर से आने वाले परिवारों के लिए एक केंद्र बिंदु है। हालांकि उफार का तत्व इसके इतिहास और बुलाहट में उदारता, उपलब्धता और विनम्रता के मूल्यों के साथ मौलिक बना हुआ है। अस्पताल भेंट करने वाली रानी अराबेला सल्वियाती की याद करते हुए पोप ने उनके महान कार्य की सराहना की, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अस्पताल का निर्माण कराया था। साथ ही संत पापा ने उन उपकारकों की भी याद की जिनकी उदारता के बदौलत असाध्य रोगों से पीड़ित बाल रोगियों के लिए प्रशामक देखभाल केंद्र बनाना संभव हो सका है। संत पापा ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, केवल इस प्रकाश में ही हम अपने द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यों को पूरी तरह समझ सकते हैं। तब संत पापा ने बम्बिनो जेसु अस्पताल की विशेषता पर गौर करते हुए कहा कि विज्ञान और इसके परिणाम स्वरूप देखभाल करने की क्षमता आज इसकी पहली विशेषता है। उन्होंने सामुदायिक भावना बनाए रखने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, यह आपकी असली ताकत है और सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना करने का आधार है। और अंत में संत पापा ने सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 16 मार्च को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में मोनसिन्योर कमिलो फारेंसिन संस्थान की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर सदस्यों से मुलाकात की। यह गैर लाभकारी संस्थान धर्माध्यक्ष कमिलो फारेसिन एक इतालवी सलेशियन मिशनरी से प्रेरणा लेता है जो ब्राजील के गुइरेटिंगा के धर्माध्यक्ष थे। वे मिशनरी संवेदनशीलता और ईश्वरीय विधान में विश्वास का एक उदाहरण थे और साथ ही उनके दो भाइयों में से एक धर्म प्रांतीय पुरोहित डॉन जोवानी बत्तीस्ता और दूसरा डॉन सांतो एक सलेशियन मिशनरी थे। 20 साल पहले स्थापित संस्थान विशेष रूप से ब्राजील और इटली में सक्रिय है जो शिक्षा, सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य देखभाल जैसे विविध क्षेत्रों में समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ काम कर रहा है और सम्मानजनक जीवन की स्थिति और नौकरी के अवसर प्रदान कर रहा है। अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने धर्माध्यक्ष कमिलो के उदाहरण का अनुसरण करते हुए गरीब से गरीब लोगों के साथ काम करने की उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से सबसे गरीब समुदायों में उनकी उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने हमारे लिए जो छोड़ा वह अनुकरण करने के लिए एक महान उदाहरण है। हमेशा सबसे नीचे तबके के लोगों के साथ रहें। संत पापा ने कहा, यह भाइयों और बहनों की वास्तविक जरूरतों की नब्ज को महसूस करने का एकमात्र तरीका है जो प्रभु हमारे मार्ग में रखते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने एक साथ काम करने के महत्व पर भी जोर दिया और संस्थान के सदस्यों से दूसरों के साथ हमेशा तालमेल बनाए रखने का आग्रह किया। और संत पापा फ्रांसिस ने बोगोटा के सहायक धर्माध्यक्ष लुइस मानुएल अली हरेरा को नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बने पोंटिफिकल कमीशन का नया सचिव नियुक्त किया। साथ ही संत पापा ने सुश्री तेरेसा मोरिस केटल कैंप को आयोग के सहायक सचिव के रूप में भी नियुक्त किया। दोनों आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। नियुक्ति घोषणा के बाद एक बयान में आयोग के अध्यक्ष कार्डिनल सीन ओमेली ने कहा कि नई नियुक्तियां हमारी कलीसिया को बच्चों और कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कार्डिनल ओमेली ने कहा, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने और सुरक्षा में अद्वितीय उपहार रखने के बावजूद नए सचिव और सहायक सचिव इस क्षेत्र में कलीसिया के लिए जीवन भर की सेवा के साथ बच्चों और कमजोर लोगों की भलाई के लिए एक समान जुनून साझा करते हैं। उधर सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के सदस्यों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने 2025 की आशा जयंती पर विचार किया और सुसमाचार प्रचार के लिए एक नए दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता पर काबू पाने के लिए दया की आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। संत पापा ने कहा, जब अभिषेक और दया की शैली के साथ सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो इसे बेहतर सुनवाई मिलती है और हृदय परिवर्तन के लिए अधिक स्वेच्छा से खुलता है। संत पापा ने कहा, हमारी धर्मनिरपेक्ष और व्यक्तिवादी दुनिया में सुसमाचार प्रचार के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने टिप्पणी की कि पिछले दशकों में धर्मनिरपेक्षता ने भारी कठिनाइयां पैदा की हैं, जो ख्रिस्तीय समुदाय का होने की भावना के नुकसान से लेकर विश्वास की उदासीनता तक फैली हुई है। संत पापा ने कहा, ये नकारात्मक प्रभाव नई डिजिटल संस्कृति द्वारा और भी अधिक बढ़ गए हैं। पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास को प्रसारित करने के लिए परिवार और ख्रिस्तीय समुदाय को प्रभु से मुलाकात करने के अनुभव की आवश्यकता होती है। यीशु मसीह से मुलाकात जीवन बदल देता है। इस वास्तविक और अस्तित्वगत मुलाकात के बिना हम हमेशा विश्वास को एक सिद्धांत बनने के प्रलोभन के अधीन रहेंगे, न कि जीवन की गवाही। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।